भागवत सार की श्रृंखला में आठवें स्कंद के 18वें अध्याय पर चर्चा है। भगवान वामन देव का अवतार, इसके एक श्लोक को दोहराएंगे। श्रीशुक उवाच इत्थं विरिञ्च स्तुतकर्म वीर्यः प्रादुर्बभूवामृत भूरदित्या चतुर्भुज शंख गदाब्ज चक्रः पिशुंग वासनलिनायते क्षणः श्रीशुक उवाच इत्थं विरिञ्च स्तुतकर्म वीर्यः प्रादुर्बभूवामृत भूरदित्या चतुर्भुज शंख गदाब्ज चक्र पिशंग वासानलिनायते क्षणः श्रीशुक उवाच इत्थं विरिञ्च स्तुतकर्म वीर्यः प्रादुर्बभूवामृत भूरदित्या चतुर्भुजः शंख गदाब्ज चक्र पिशंग वासानलिनायते क्षणः
Bye.
बात जी श्री शुक उवाच। श्री सुखदेव गोस्वामी ने कहा इत्थम इस तरह से विरिंच स्तुत कर्म वीर्यः भगवान जिनके कार्यों एवं पराक्रम की प्रशंसा ब्रह्मा जी भी करते हैं प्रादुर्भूव प्रकट हुए अमृत भू जिनका प्राकट्य सदैव मृत्यु रहित होता है आदित्याम क्षमा चाहते अदित्याम अदिति के गर्भ से चतुर्भुज चार भुजाओं वाले शंख गदा अब्ज चक्र शंख गदा कमल तथा चक्र से सुशोभित पिशंग वासा पीतांबर धारण किए हुए नलिन आयत इक्षण कमल की पंखुड़ियों के समान खिली हुई आंखों वाले। अनुवाद और तात्पर्य श्री भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद के द्वारा। सुखदेव गोस्वामी ने कहा जब ब्रह्मा जी इस प्रकार भगवान के कार्यों एवं पराक्रम का यशोगान कर चुके तो भगवान जिनकी एक सामान्य जीव की भांति कभी मृत्यु नहीं होती अदिति के गर्भ से प्रकट हुए। उनके चार हाथ शंख चक्र गदा तथा पद्म से सुशोभित थे। वे पीताम्बर धारण किए हुए थे और उनकी आंखें खिले हुए कमल की पंखुड़ियों जैसी प्रतीत हो रही थीं। तात्पर्य इस श्लोक में अमृत भू शब्द महत्वपूर्ण है। कभी कभी भगवान सामान्य बालक की भांति जन्म लेकर प्रकट होते हैं किंतु इसका यह अर्थ नहीं होता कि वे जन्म मृत्यु या बुढ़ापे से प्रभावित होते हैं। भगवान के अवतारों के प्राकट्य तथा उनके कार्यकलापों के विषय में समझने के लिए बहुत बुद्धिमानी चाहिए। इसकी पुष्टि भगवत गीता में हुई है जन्म कर्म चमे दिव्यम एवं युवेत्ति तत्वतः। मनुष्य को यह समझने का प्रयत्न करना चाहिए कि भगवान का प्राकट्य तथा तिरोभाव एवं उनके कार्यकलाप दिव्य होते हैं। भगवान को भौतिक कार्यकलापों से कोई सरोकार नहीं होता। जो कोई भगवान के प्राकट्य तिरोधान तथा कार्यकलापों को समझता है वह तुरंत मुक्त हो जाता है। इस शरीर को छोड़ने पर उसे फिर से भौतिक शरीर कभी नहीं धारण करना पड़ता अपितु वह सीधे व्हाट इज द इंग्लिश वर्ड लास्ट लाइन डायरेक्टली स्पिरिचुअल वर्ड। यह अनुवाद गलत है। यहाँ लिखा सीधे स्वर्ग को चला जाता है इसलिए हमने पढ़ा नहीं क्योंकि जो भक्ति करेगा वो स्वर्ग क्यों जाएगा। तो ये अनुवाद यहाँ गलत है। तो वो सीधे आध्यात्मिक जगत को चला जाता है। त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नैति मामेति स्वर्जुन। ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकय चक्षुरुं मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकं। वंदेहं श्री गुरव श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादां सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः नमः ॐ विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामीनिति नामिने नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे सर्वशास्त्राधिपीयूषः सर्ववेदैकसत्फलः सर्वसिद्धान्तरत्नाढ्या सर्वलोकैकदृक्प्रदा सर्वभागवत प्राण श्रीमद्भागवत प्रभो कलिध्वान्तोदिदादित्य श्रीकृष्ण परिवर्तिता परमानंद पाठाय प्रेम वर्षक्षराय ते सर्वदा सर्वसेव्याय श्रीकृष्णाय नमोस्तुते मदेक बंधो मत्संगी मद्गुरो मन्महाधना मन्निस्तारक मद्भाग्य मदानंद नमोस्तुते असाधु साधु तदाई अति नीचोचतः कर हानमुंच कदाचिन्मा प्रेम्णा हृत्कंठयो स्फुर हरे कृष्णा। तो ये आठवां स्कंद का अंतिम विभाग चल रहा है जिसमें वामन देव की कथा है और इसके बाद केवल एक अंतिम अध्याय में मत्स्य अवतार की कथा होगी। तो वामन देव की कथा में अभी तक हम लोग सुन चुके हैं कि कैसे जब समुद्र मंथन के बाद बलि महाराज का वर्णन हुआ, अगले मनवंतर में वो इंद्र बनेंगे, तो तब प्रश्न हुआ कि कैसे ऐसा हुआ, तो फिर भगवान ने भिक्षा क्यों मांगी, बलि महाराज ने सब कुछ दे दिया फिर भी उनको बंदी क्यों बनाया। तो उस प्रश्न के उत्तर में अब कथा वामन देव की हो रही है। हम लोग सुन चुके हैं कि अदिति बड़ी दुखी थी अपने पुत्रों के छुप जाने के कारण, उनको स्वर्ग छोड़कर जाना पड़ा और फिर उन्होंने कश्यप मुनि से प्रार्थना की, उन्होंने पयोव्रत करने के लिए कहा। 12 दिन तक उन्होंने बड़ा कड़ा व्रत किया और भगवान प्रकट हुए उनके सामने। भगवान ने आशीर्वाद दिया कि असुर अभी इस समय बहुत शक्तिशाली हैं, उन्हें मारा नहीं जा सकता, मतलब भगवान कहते मैं भी नहीं मार सकता, तो इसीलिए कुछ ना कुछ करूंगा। और फिर भगवान ने उनका पुत्र बनना स्वीकार किया। तो अभी इस अध्याय में भगवान वामन देव का आविर्भाव है। तो जैसे हमने श्लोक में पढ़ा, प्रथम श्लोक में, कि सुखदेव गोस्वामी ने आगे कहा कि जब ब्रह्मा जी ने, भगवान जब माँ के गर्भ में थे तो ब्रह्मा जी ने स्तुतियाँ अर्पण की। तो अब जब ब्रह्मा जी ने स्तुतियाँ अर्पण कर ली, अब समय आया भगवान के प्राकट्य का। तो फिर भगवान प्रकट हुए अदिति के सामने। बहुत सुंदर रूप था भगवान का, पीताम्बर धारण किए हुए थे, कानों में मकर कुंडल थे, उनके गले में बहुत सुंदर पुष्पों की माला थी, और इतने वो पुष्प जो थे महक रहे थे, एकदम ताजे थे, कि उन पर भंवरे घूम रहे थे जब भगवान प्रकट हुए। तो ऐसे भगवान का बड़ा सुंदर रूप होता है। कई स्थानों पर भगवान के रूप का वर्णन किया गया। एक भक्त को भगवान का रूप बहुत सुंदर लगता है। जो अभक्त होता है उसको पत्थर या लकड़ी दिखाई देते हैं, लेकिन भक्त के लिए वो सुंदर रूप है। जैसे भगवान विट्ठल देव, अगर कोई देखे जो भक्त ना हो तो उसके लिए तो काला पत्थर है, लेकिन भक्तों के लिए जब उनके रूप का वर्णन करते हैं तो बहुत सुंदर वो लगते हैं। ऐसे उनके रूप का वर्णन हुआ है, सुंदर ते ध्यान उभे बीटवरी कर कटवरी घेऊनिया घेऊनिया। तो ऐसे उनका सुंदर रूप है, सुंदर ते ध्यान उभे बीटवरी, वीट ईट के ऊपर खड़े हुए हैं, हाथ उनके कमर पर हैं, कर कटवरी। तो ऐसे भगवान के सुंदर रूप का वर्णन किया जाता है। और भागवत में भी हम लोग देखते हैं, जब भी भगवान प्रकट होते हैं तो उनके सुंदर रूप का वर्णन होता है। तो भगवान प्रकट हुए, गले में कौस्तुभ मणि थी, और ऐसा वर्णन है कि उनकी वो मणि के प्रकाश से कश्यप मुनि का सारा आश्रम प्रकाशमय हो गया। वैसे तो भगवान के आने से ही प्रकाशमय हो जाता है, कौस्तुभ मणि की आवश्यकता नहीं है। भगवान ही इतने प्रकाशमय हैं कि उनके प्रकाश से सारा आध्यात्मिक जगत प्रकाशमान होता है। आध्यात्मिक जगत में कोई सूर्य चंद्रमा की आवश्यकता नहीं होती है। दंतत भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः। प्रभुपाद लिखते हैं कि न सूर्य न चंद्रमा न इलेक्ट्रिसिटी। हमें यहाँ पर प्रकाश के लिए या सूर्य चाहिए या चंद्रमा चाहिए, नहीं तो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए। लेकिन आध्यात्मिक जगत में भगवान की कांति से सब कुछ प्रकाशमय है। तो इसीलिए भगवान जब प्रकट हुए तो कश्यप मुनि का सारा जो आश्रम था प्रकाशमय हो गया। और फिर जब अदिति ने देखा कि भगवान प्रकट हुए हैं मेरे पुत्र के रूप में मेरे गर्भ से, वो बड़ी प्रसन्न हो गई। और ऐसा वर्णन है कि जब कश्यप मुनि ने देखा कि भगवान प्रकट हुए हैं तो वो जोर जोर से चिल्लाने लगे, जय जय, बहुत प्रसन्न हो गए भगवान को देखकर। तो ऐसे भगवान प्रकट हुए श्रावण मास की द्वादशी के दिवस पर, जिसे विजया द्वादशी भी कहते हैं। अभिजीत मुहूर्त था। भगवान जब भी प्रकट होते हैं तो अभिजीत मुहूर्त में ही प्रकट होते हैं। श्री कृष्ण अभिजीत मुहूर्त में प्रकट हुए, रामचंद्र अभिजीत मुहूर्त में प्रकट हुए, चैतन्य महाप्रभु अभिजीत मुहूर्त में प्रकट हुए। तो ये भगवान को बहुत प्रिय है, अभिजीत हरि प्रीता। तुलसीदास जी लिखते हैं जब रामचंद्र जी के जन्म का वर्णन करते हैं कि ये हरि प्रीता है, भगवान को बहुत प्रिय है अभिजीत मुहूर्त। तो भगवान प्रकट हो गए, चतुर्भुज रूप था, और फिर उन्होंने अपने इस चतुर्भुज रूप को वामन रूप में कर लिया। एक छोटे बटुक ब्रह्मचारी के रूप में आ गए। तो जो चतुर्भुज रूप बड़ा दिव्यमान रूप था, उसको उन्होंने छुपाकर अब वो साधारण एक बटुक ब्रह्मचारी के रूप में आ गए। तो प्रभुपाद यहाँ लिखते हैं कि ये भगवान हैं। इससे पता चलता है कि भगवान का शरीर साधारण भौतिक नहीं है, क्योंकि हम लोग चाहें भी तो अभी अपने शरीर को नहीं बदल सकते, है ना। लोग बहुत प्रयास करते अपने शरीर को बदलने के लिए, शरीर मतलब रंग को भी, कभी कोई काला होता है तो बहुत सारे वो लगा लगा के गोरे होने का प्रयास करता है, कोई मोटा होता है तो पतला होने का प्रयास करता है। पर अगर वो कर भी लेता है तो उसी शरीर को थोड़ा सा इधर उधर कर लेता है, लेकिन पूरा शरीर बदल लेना, कि वो प्रकट हुए चतुर्भुज रूप में और अब द्विभुज रूप बटुक ब्राह्मण के रूप में प्रकट हो गए, ये केवल श्री कृष्ण कर सकते हैं, भगवान कर सकते हैं। तो इसीलिए प्रभुपाद लिखते कि उनका शरीर साधारण नहीं है, भौतिक नहीं है, जो बदला नहीं जा सकता, वो दिव्य है और असंख्य रूप भगवान लेते हैं। रामादिमूर्ति शुकला नियमेन तिष्ठन, भगवान बहुत सारे अवतार लेते हैं, असंख्य अवतार हैं। जैसे लोग कहते हैं कि विष्णु के 10 अवतार हुए, ऐसा नहीं है, या भागवत में 24-28 अवतार दिए गए, ऐसा नहीं है, असंख्य अवतार है। इसीलिए तो सुखदेव गोस्वामी जब अवतारों का वर्णन करते हैं उसके बाद कहते हैं कितने अवतार कहूं मैं, ये लहरों की तरह आते रहते हैं भगवान के अवतार, इसीलिए सबको कहना असंभव है। तो जो बहुत वर्णन थोड़े थोड़े किए जाते हैं, 10 अवतार ज्यादातर लोग कहते हैं। क्यों कहते हैं 10 अवतार? इसके कारण है, एक कारण है कि ये 10 प्रसिद्ध अवतार हैं जिनकी लीलाएं थोड़ी प्रसिद्ध हुई। दूसरा कारण ये है कि जयदेव गोस्वामी ने दशावतार स्तोत्र लिखा और जिसके कारण ये 10 अवतार बड़े प्रसिद्ध हो गए। तो लोग सोचते हैं कि केवल 10 ही अवतार हैं भगवान के, इसीलिए बाहर जो लोग सही दृष्टि से शास्त्र नहीं पढ़ते हैं वो बड़े गर्व से कहते कि हमें पता है कि विष्णु के 10 अवतार हुए। तो क्या केवल 10 ही अवतार हुए भगवान के और कोई अवतार नहीं? तो असंख्य अवतार है। तो ऐसे भगवान ने वामन रूप लिया, अपने आप को बदल लिया। प्रभुपाद एक बहुत सुंदर बात कहते हैं, एक तो बताते हैं कि आध्यात्मिक शरीर है, दूसरा वो कहते हैं कि एक नट की तरह है। एक जैसे कोई ड्रामा चल रहा होता है, नाटक हो रहा होता है, तो उसमें जो कलाकार होता है वो अलग अलग अपने वेश बदल लेता है, कभी राजा बन जाता है, कभी भिखारी बन जाता है, कभी साधारण व्यक्ति बन जाता है। तो ऐसे ही भगवान हैं जो एक लीला करते हैं, नाटक करते हैं और उसमें कोई भी रूप ले लेते हैं, लेकिन उनको मेकअप की जरूरत नहीं पड़ती, उनके लिए एक मेकअप मैन रेडी नहीं रहता कि उनके कपड़े बदलने, वो अपने आप ये सब कर लेते हैं। कुंती महारानी भी अपनी प्रार्थनाओं में इसको कहती हैं, वो कहती हैं माया जवनिका छन्नम अज्ञाधोक्षजम अव्ययम् न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्यधरो यथा। वो कहती हैं कि भगवान से कहते हैं कि आप ऐसे आते हैं कि मानो एक नटो नाट्य धरो यथा, एक नाटक में काम करने वाला कलाकार है, इस प्रकार आप अपने आप को न लक्ष्य से, लोग देख नहीं पाते हैं आपको। क्यों नहीं देख पाते हैं? माया जवनिका छन्नम, माया का आवरण पड़ा हुआ है, इसीलिए लोग आपको समझ नहीं पाते, आपको देख नहीं पाते और आप अलग अलग रूपों में प्रकट होते हैं। अज्ञाधोक्षजम अव्ययम, आप वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, वही पुरातन, वही पुराण भगवान हैं, लेकिन फिर भी भगवान को आपको देख नहीं पाते क्योंकि आप एक नाट्य कलाकार का रूप ले लेते हैं। तो ऐसे भगवान प्रकट हुए, उन्होंने बहुत सुंदर रूप लिया। तो उस समय कश्यप मुनि ने, जो उस समय क्रियाएं करनी होती हैं, जन्म का उत्सव इत्यादि मनाया गया और साथ साथ उनका उपनयन भी कर दिया, क्योंकि वो कोई छोटे बालक के रूप में तो प्रकट नहीं हुए थे कि अब बड़े होंगे फिर उसके बाद उनका उपनयन होगा इतने वर्ष के बाद इत्यादि, वो तो प्रकट ही हुए थे उसी रूप में, तो तुरंत उनका उपनयन भी हो गया। जन्म संस्कार और उपनयन एक साथ हो गया उनका। उपनयन का अर्थ, उपनयन एक संस्कार है, हमारे वैदिक साहित्यों में कई संस्कार दिए गए हैं, बालक के गर्भ में आने से पूर्व से लेकर मृत्यु तक कई संस्कार हैं, जिनमें थोड़े प्रमुख संस्कार हैं, 16 संस्कार प्रमुख कहे जाते हैं। तो प्रारंभ होता है इसका गर्भाधान से लेकर, जब अभी गर्भ में जीव ने प्रवेश नहीं किया उसके पहले से संस्कार प्रारंभ हो जाते हैं, और फिर आगे चलकर कई संस्कार हैं जन्म के बाद इत्यादि, मृत्यु संस्कार, अंतिम संस्कार तक कई संस्कार होते हैं। तो इनमें एक उपनयन संस्कार है, जहाँ बच्चे को, बालक को जनेऊ दिया जाता है, या उसको कहना चाहिए कि उसको ब्राह्मण बनाया जाता है, द्विज बनाया जाता है। तो ऐसे वो एक संस्कार है, तो उपनयन संस्कार भी उनका कर दिया भगवान का। तो भगवान का उपनयन संस्कार हुआ तो उस समय उपहार दिए जाते हैं, तो सभी देवताओं ने आकर उपहार दिए। ब्रह्मा जी आए, यमराज आए, भूमि देवी आई, भगवती देवी आई, सबने उपहार दिए उनको, अलग अलग उपहार। सूर्य देव ने स्वयं उस समय, वैसे उपनयन के समय जो पिता होते हैं साधारणतः या गुरु जो होते हैं वो कान में गायत्री मंत्र कहते हैं, तो सूर्य देव ने स्वयं आकर गायत्री मंत्र भगवान को कहा, क्योंकि गायत्री मंत्र सूर्य से संबंधित, तो सबसे पहले सूर्य ने गायत्री मंत्र कहा। और अन्य लोगों ने बहुत सारी चीजें दी, किसी ने, जैसे पृथ्वी ने उन्हें पहनने के लिए जो मृग चर्म होता है वो पृथ्वी देवी ने उन्हें दिया, और बहुत सारी, ब्रह्मा जी ने कमंडलू दिया उन्हें। तो ब्रह्मचारियों के लिए और एक आवश्यक चीज होती है जो बड़ी विचित्र बात है कि कुबेर ने दी। कुबेर ने भगवान को भिक्षा का पात्र दिया, भीख मांगने का कटोरा कहना चाहिए। कुबेर ने, जो धनाढ्य है जिनके पास सारा धन है, वो भिक्षा का कटोरा दे रहे हैं, बताइए ये बड़ी विचित्र बात है ना। उनको तो बहुत कुछ देना चाहिए, तो सोने की चेन वेन दे देते भगवान को, तो भिक्षा का कटोरा क्यों दे रहे हैं? मानो वो कह रहे हो कि आपके ऐश्वर्य के सामने मैं तो एकदम भिखारी हूं, इसीलिए मैं यही दे सकता हूं। क्योंकि भगवान का ऐश्वर्य तुलना अगर की जाए तो कुबेर का क्या ऐश्वर्य है, कुछ ऐश्वर्य नहीं। तो कुबेर ने भिक्षा का पात्र दिया, और सबसे पहली भिक्षा भगवती देवी ने दी। अर्थात जो भौतिक प्रकृति हैं, जो भौतिक जगत की कमांडर हैं, भौतिक जगत को चलाती हैं, वो सबसे पहली भिक्षा दे रही हैं भगवान को। तो ऐसे ये अलग अलग इस सब के बड़े महत्व हैं कि क्यों किसी ने इस चीजों को दिया। तो फिर जब सबने ये ऐसे दे दिए, इसका एक महत्व हम सीख सकते हैं कि किस प्रकार हमें भगवान को अर्पण करना सीखना चाहिए। सारे देवता आकर ये सेवा कर रहे हैं, ऐसा नहीं था कि भगवान को आवश्यकता थी। जब भगवान अपना रूप बदल सकते हैं तो इन सारी चीजों को स्वयं प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन देवता आकर अपनी सेवा कर रहे हैं, इसीलिए क्योंकि भगवान प्रकट हुए हैं तो देवता भी सेवा करना चाहते हैं। भगवान के प्रकट होने के कारणों में से एक कारण है कि भगवान सेवा स्वीकार करते हैं। हम लोग कई कारणों को देखते हैं, भगवद गीता में कहा गया परित्राणाय साधुनाम धर्म संस्थापनार्थाय इत्यादि इत्यादि, तो वो तो कारण है ही भगवान के प्रकट होने के, लेकिन एक कारण है कि भगवान सेवा स्वीकार करना चाहते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण कारण भगवान के प्राकट्य का क्या है? ये जो सारी लीलाएं भगवान करते हैं, आते हैं, भक्तों को आनंद देते हैं, दुष्टों का संहार करते हैं, इसका प्रमुख कारण क्या है? भगवान हम सबको अपनी ओर आकर्षित करना चाहते हैं, हम सबको अपने धाम में ले जाना चाहते हैं, ये भगवान के प्राकट्य का मुख्य कारण है। तो इसीलिए वो आते हैं ताकि ये जो बद्ध जीव हैं ये भगवान से आकर्षित हो सकें। तो और कई कारण हो सकते हैं भगवान के प्राकट्य के। कुंती महारानी अपनी प्रार्थनाओं में भगवान के प्राकट्य के कई कारण देती हैं। वो कहती हैं कि कुछ लोग कहते हैं कि आप जो पुण्यवान राजा हैं उनका गुणगान करने के लिए प्रकट हुए हैं, फिर कुछ लोग कहते हैं कि आप यदु महाराज, यदु का गुणगान करने के लिए, क्योंकि यदु वंश में आप हुए हैं तो आप महाराज यदु का गुणगान करने के लिए प्रकट हुए हैं। कुछ लोग कहते हैं कि क्योंकि देवकी और वसुदेव ने बहुत प्रार्थना की तो उसके लिए आप प्रकट हो गए। कुछ कहते हैं कि आप दुष्टों का संहार करने के लिए प्रकट हुए हैं, और कुछ लोग कहते हैं कि आप ब्रह्मा जी की प्रार्थनाओं के कारण प्रकट हुए हैं। ब्रह्मा जी ने प्रार्थना की कि अब इस जगत में बहुत ज्यादा अधर्म फैल गया है, कृपया आप आइए, तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना को पूरा करने के लिए आप प्रकट हुए। तो ऐसे अलग अलग कारण कुंती महारानी देती हैं, और एक महत्वपूर्ण कारण वो देती हैं कि आप भक्ति को पुनः पोषण देने के लिए प्रकट हुए हैं। भक्ति अर्थात श्रवण कीर्तन इत्यादि, इसको पुनः पोषण देने के लिए आप प्रकट हुए हैं। तो ऐसे भगवान अलग अलग कारणों से प्रकट होते हैं, और एक कारण है कि वो सेवा स्वीकार करना चाहते हैं। इसीलिए हम सबको भगवान की सेवा करने का प्रयास करना चाहिए। और भगवान की सेवा कैसे हो सकती है, हम कैसे भगवान को बारंबार सेवा कर सकते हैं, जो कुछ हमारे पास है उसको भगवान को अर्पण करके, भगवान का स्मरण हृदय में करके। क्योंकि जब हम भगवान का स्मरण करते हैं हृदय में, तब हम भगवान को सेवा भी अच्छी तरह से कर पाते हैं। तो भगवान को हृदय में लाना, यहाँ जैसे भगवान प्रकट हो रहे हैं अदिति के सामने, तो हम सबको ये प्रयास करना चाहिए कि हम भक्ति के द्वारा भगवान को अपने हृदय में प्रकट करा सके, भगवान को स्मरण कर सके हृदय में। मनसा स्मरामी, बहुत सुंदर उस श्लोक में बिल्व मंगल ठाकुर लिखते हैं कि कैसे हमें सदैव भगवान का स्मरण करना चाहिए, उनके रूप का स्मरण करना चाहिए। करारविंदे न पदारविंद मुखारविंदे विनिवेशयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटेशयानं बालं मुकुंदं मनसा स्मरामि। तो कहते हैं कि कितना सुंदर, करार विंदे न मुखार विंदे, भगवान ने अपने मुख में अपने पांव को डाला हुआ, जैसे छोटा सा बच्चा डाल लेता है, और ऐसे भगवान वटस्य पत्र से वटवत पत्र पर लेटे हुए हैं, ऐसे उनका स्मरण, मनसा स्मरामि, मन में स्मरण करना चाहिए। तो जिस तरह अदिति स्वागत कर रही हैं भगवान का, हमें स्वागत करना चाहिए भगवान का अपने हृदय में। और किस व्यक्ति के हृदय में भगवान रहते, ये प्रमाण कैसे पता चले कि भगवान हमारे हृदय में है, तो उसका प्रमाण ये है कि वो व्यक्ति जो भगवान के लिए सभी त्याग करने तैयार है, भगवान की प्रसन्नता के लिए जो जी रहा है, उस व्यक्ति के हृदय में भगवान, और फिर उसके वचनों को भगवान सत्य करते हैं। ब्रह्मा जी भागवत के दूसरे स्कंद में नारद मुनि को बताते हैं, वो कहते हैं कि क्योंकि मेरे हृदय में भगवान है, मैंने भगवान को बड़े ध्यान पूर्वक अपने हृदय में रखा है, इसलिए मेरे वचन सत्य हैं, मेरे वचन कभी झूठे नहीं हो सकते, और मेरी कार्य अर्थात जो इंद्रियों से हम लोग कार्य करते हैं वो भी कभी गलत नहीं हो सकते, और ना ही मेरा मन कभी किसी गलत स्थान पर जा सकता है। इस जगत में हम लोग जब इस भौतिक जगत से आदान प्रदान करते हैं तो तीन प्रकार से करते हैं, अपनी वाचा से, अपने विचारों से, और अपने कार्यों से, इंद्रियों से, मनसा कर्मणा वाचा, तीन तरह से करते हैं। और ब्रह्मा जी इन्हीं तीनों की शुद्धता की बात करते हैं। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि क्योंकि मेरे हृदय में भगवान है, इसलिए मेरी वाचा वचन कभी झूठे नहीं हो सकते। तो जो भगवान के शुद्ध भक्त होते हैं उनके वचन सदैव सत्य होते हैं, अगर वो गलती से झूठ भी बोल दे तो भगवान उसको सत्य कर देते हैं, क्योंकि भगवान के लिए कोई बड़ी बात है झूठ को सत्य करना। अर्थात किसी ने, प्रभुपाद ने कहा मेरे 108 मंदिर हैं, कोई मंदिर नहीं था उस समय पर, लेकिन 108 मंदिर हुए, सत्य वचन। तो जो भगवान के भक्त होते हैं वो भगवान को समझते हैं, भगवान से प्रेम करते हैं। प्रभुपाद ने हम सबसे कहा है कि हमें प्रभुपाद के ग्रंथ पढ़ने चाहिए, भगवद गीता, भागवतम, चैतन्य चरितामृत, ये एक के बाद एक क्यों है। भगवद गीता हमें भगवान का विज्ञान समझाता है, भागवतम भगवान से प्रेम करना सिखलाता है, और चैतन्य चरितामृत उस प्रेम की तीव्रता को दर्शाता है, कैसे वो तीव्र प्रेम होना चाहिए। इसीलिए प्रभुपाद ने अपने पूरे आंदोलन को इन पर आधारित किया, ताकि हम प्रेम की तीव्रता को प्राप्त कर सकें। एक समय प्रभुपाद ने अपने भक्तों से पूछा, शिष्य बैठे थे, उन्होंने पूछा कि बताओ आप लोगों को क्या लगता है मैंने ये सब ग्रंथ क्यों लिखे। तो सारे कोई ना कोई उत्तर देने लगे, आप हमें भक्ति कराना चाहते हैं, आप हमें ज्ञान देना चाहते हैं, आप हमें कृष्ण के विषय में बताना चाहते हैं। तो प्रभुपाद ने कहा नहीं, ये सब नहीं। उन्होंने कहा मैंने सारे ग्रंथ लिखे हैं आप सबको हरे कृष्ण महामंत्र प्रेरित की जप करने की प्रेरणा देने के लिए, बस। अब ग्रंथ पढ़िए और हरे कृष्ण महामंत्र का जप कीजिए, यही उद्धार करेगा। तो प्रभुपाद ने ग्रंथ लिखे जिससे हम हरे कृष्ण महामंत्र का जप करके भगवान के प्रति प्रेम को बढ़ा सकें। प्रभुपाद जैसे हम बता रहे थे, ब्रह्मा जी ने कहा कि क्योंकि उनके हृदय में उन्होंने भगवान को बड़ी कड़ाई से दृढ़ता से पकड़ कर रखा है, इसलिए उनके वचन सत्य हैं, उनके उनके द्वारा भगवान उनके कार्यों को करते हैं। जैसे उनके वचन सत्य हो जाते हैं, उनका मन कभी इधर उधर नहीं भटकता और जो उनके कार्य हैं वो हमेशा सही होते हैं। प्रभुपाद के कुछ प्रसंगों से हम जान सकते हैं कि कैसे प्रभुपाद के हृदय में भगवान थे। एक प्रसंग है जब एक भक्त थे जिनकी दीक्षा हो रही थी, तो दीक्षा जनरली सब प्रभुपाद दीक्षा दिया करते थे तो वो माला पर जप करते थे, 108 बार पूरा जप करते थे फिर वो माला देते थे, तो कई घंटों की ये सेरेमनी होती थी। तो एक बार एक भक्त आए और उनका दीक्षा होना था, तो प्रभुपाद के पास बैठे और उनकी बड़े दिनों से इच्छा थी कि मेरा नाम मदन गोपाल हो। दीक्षा बोल तो सकते नहीं थे, गुरु को थोड़ी कहेंगे कि मुझे ये नाम चाहिए, लेकिन हृदय में इच्छा थी। और जब वो आके बैठे प्रभुपाद जब कर रहे हैं माला पे, जो माला देने वाले हैं, उनके मन में ये लग रहा है कि बस अब प्रभुपाद अगर नाम बोले तो मदन गोपाल, मदन गोपाल। उनको बहुत वो था कि जैसे लोग सोच के रख लेते ना कि ये नाम होना चाहिए, है ना, जैसे कई लोग अलग अलग पहले से अटकलें लगाने लगते हैं, इनका ये नाम होगा, इनका वो नाम होगा इत्यादि, तो मदन गोपाल होना चाहिए। तो प्रभुपाद ने जब पूरा कर लिया और फिर प्रभुपाद ने कहा कि आज से तुम्हारा नाम अब बस आना है कि नाम आना चाहिए। और फिर प्रभुपाद के सेक्रेटरी बैठे थे साइड में, तो प्रभुपाद ने उनकी तरफ देख के पूछा, ये मदन गोपाल नाम मैंने किसी को दिया है? सेक्रेटरी सेक्रेटरी अभी ये व्यक्ति आप सोचिए, इसने कभी किसी से नहीं कहा कि मुझे मदन गोपाल नाम, कैसे कह सकता है? तो प्रभुपाद से तो कह ही नहीं सकता। और यहां प्रभुपाद बैठे बस अब नाम देने वाले, इतना भी कह रही है आज से तुम्हारा नाम, फिर सेक्रेटरी को पूछते हैं ये मदन गोपाल नाम मैंने किसी को दिया है? सेक्रेटरी ने पूरा देखा, हाँ प्रभुपाद पहले आपने किसी को दिया, अच्छा आज से तुम्हारा नाम भरद्वाज दास है। तो प्रभुपाद ने यह भी बता दिया कि मुझे पता है तुम्हारी क्या इच्छा है, लेकिन यह भी बताया कि जो गुरुदेव उसको स्वीकार करना चाहिए। तो ऐसे प्रभुपाद ने कई स्थान पर किया। एक बार एक सन्यासी प्रभुपाद को मिलने आए, भारत से आए थे, तो प्रभुपाद के उस समय सब विदेशी भक्त थे, तो वो कुछ हिंदी में बात कर रहे थे, उनको कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या बोल रहे हैं। फिर अचानक प्रभुपाद ने बीच में बोला, नो माई डिवोटीज कैन स्पीक संस्कृत। ऐसा हुआ होगा कि वो सन्यासी ने क्या कहा वो तो पता नहीं, उन्होंने कुछ कहा होगा कि आपके तो सभी इंग्लिश बोलते हैं कुछ, प्रभुपाद ने कहा नो माई डिवोटीज कैन स्पीक संस्कृत। तो उस समय उसके पहले प्रभुपाद ने जब वो आए थे उनका आदर सत्कार किया था, भक्तों को कहा था कुछ फ्रूट्स वगैरह लाओ, तो एक भक्त विदेशी भक्त वो फ्रूट्स की प्लेट लेकर आ रहा था और प्रभुपाद उस सन्यासी को बड़े विश्वास से कह रहे थे नो माई डिवोटीज कैन स्पीक संस्कृत, मेरे भक्त संस्कृत बोल सकते हैं। और फिर वो जो फ्रूट की प्लेट ला रहा था भक्त, प्रभुपाद ने उसको बोला संस्कृत के श्लोक बोलो। अब ये जो भक्त था ये कई दिनों से ईशोपनिषद के श्लोकों को पढ़ रहा था, वो याद कर रहा था, तो उसको तो बड़ा आनंद आ गया क्योंकि अब तो बोलना है, और ईशोपनिषद के लेकिन उसने 6 ही श्लोक याद किए थे, आगे हो नहीं पा रहा था उससे, तो 6 श्लोक याद थे। प्रभुपाद ने बोला बोलो संस्कृत के श्लोक, मतलब प्रभुपाद दिखा रहे थे उस भारतीय सन्यासी को कि ऐसा नहीं है कि ये लोग सब मलेच्छे हैं कुछ बोल नहीं सकते। तो उसने कहा ठीक है, तो उसने बोलना शुरू किया, पहला श्लोक बोल दिया ईशोपनिषद का और चुप हो गया। प्रभुपाद ने कहा कंटिन्यू और बोलो, तो उसने दूसरा बोल दिया प्रभुपाद, तीसरा प्रभुपाद, अब चौथा बोल दिया, पांचवें तक पहुंचा तो उसको पसीने आने शुरू हो गए कि अगर प्रभुपाद ने इसके आगे 6 के बाद तो मुझे मालूम नहीं है। और जब छठा श्लोक बोलने लगा तो भक्त बता रहे थे कि मुझे ऐसा लगा मेरी स्थिति द्रौपदी की तरह हो गई है कि बस अब निर्वस्त्र होने ही वाले हैं, वस्त्र कपड़े उतरेंगे, अब तो बिल्कुल छठे के बाद कुछ नहीं आता। तो बोले छठे की पहली लाइन बोली, दूसरी लाइन बोली, तीसरी बोली, चौथी बोली, वो बोल रहे थे मैं आंखें बंद करने वाला था कि प्रभुपाद की तरफ देखूं नहीं, तो जैसे ही चौथी लाइन पूरी की प्रभुपाद ने कहा बस इनफ ठीक है। तो ऐसे कई उदाहरण हैं, ये तो कोई बहुत थोड़े से चीजें हैं। प्रभुपाद ने जो समझाया। तो इस तरह ऐसे जो लोग भगवान से जुड़े होते हैं वे सब भगवान को अपने हृदय में रखते हैं और उसी के कारण उनके कार्य शुद्ध होते हैं। हमारे कार्य भी शुद्ध हो सकते हैं अगर जो हमारी क्षमता है वो हम भगवान को अर्पण करें। हम सब इस जगत में संतुष्ट नहीं है, हमारी असंतुष्टि है, इसीलिए हम कुछ पाने की कामना करते हैं, देने की कामना नहीं करते। जो है उसको भगवान को दे देना है, लेकिन हम पाने की कामना करते हैं, क्योंकि इस जगत का ये स्वभाव है कोई संतुष्ट रह ही नहीं सकता। जैसे कहानी बताई जाती है कि एक बार कौवा उसने एक हंस को देखा, तो हंस बड़ा सफेद, कौवा तो काला होता है, वैसे भारत में काला होता है, अफ्रीका में गोरा होता है कौवा, मतलब एटलीस्ट उसका यहाँ का जो पोर्शन है बीच का वो गोरा होता है, वाइट एकदम, यहाँ हमने कभी ऐसे कौवे देखे नहीं, यहाँ पूरा काला होता है। तो खैर कौवा काला होता है, उसने हंस को देखा तो हंस के पास गया, बोले तुम तो बड़े खुश हो गए, प्रसन्न रहते हो गए, कौवा सोच रहा था मैं काला हूं तो तुम तो बड़े प्रसन्न रहते हो गए, इतने तुम गोरे हो सफेद हो। तो हंस ने कहा कि देखो मेरा तो क्या है, पूरी जगह से सफेद सफेद एक ही रंग है पूरा, लेकिन मैं जब तोते को देखता हूं तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है, उसका हरे रंग का है, लाल उसकी चोंच है, बड़ा कलरफुल लगता है, वो अच्छा है। तो वो तोते के पास चला गया कौवा कि तो तुम तो बहुत खुश हो गए, तुम्हारे इतने रंग है। तो बोला मेरे क्या है, मोर को देखो, मैं तो ठीक है जरा सा तोता हूं, मोर को देखो इतना सुंदर उसका गला है, और फिर वो जो पंख फैलाता है इतना सुंदर लगता है, मोर से सुंदर और कौन हो सकता। तो कौवा मोर के पास चला गया। ये मोर एक बंद था, वो चिड़ियाघर होता है ना उसमें था, तो मोर के पास चला गया। तो उसने मोर से कहा कि देखो तुम तो कितने सुंदर हो, तुम्हारा गला इतना सुंदर, तुम्हारे पंख इतने। तो मोर ने कहा ये सही है कि मैं सुंदर हूं, लेकिन देखो एक बात, यही सुंदरता के कारण मुझे चिड़ियाघर में लाके बंद कर दिया है, एक ही पक्षी है जिसको चिड़ियाघर में नहीं रखा जाता। तो कौवे ने पूछा कौन, बोले कौवा। कौवे तो चिड़ियाघर में नहीं रखा है, तो कौन दिखाएगा चिड़ियाघर, कौन देखने जाए। तो बोले इसीलिए कौवा बनना सुखी है, ये मोर बन के कोई फायदा नहीं। तो कौवा सुखी नहीं है, वो सोच रहा है हंस सुखी है, हंस सुखी नहीं है सोच रहा है, तोता सुखी है, तोता सुखी नहीं वो सोच रहा है, मोर सुखी और मोर सुखी नहीं वो सोच रहे, कौवा सुखी है, बाहर तो है कम से कम। तो इस जगत में कोई सुखी नहीं है, इसीलिए हमें प्रयास करना चाहिए, सुखी होने का प्रयास त्याग देना चाहिए। इस जगत में हमें कृष्ण भावना भावित होने का प्रयास करना चाहिए, और कृष्ण भावना भावित होने के लिए जैसे हम यहां देख रहे हैं प्रसंग में कि सब कुछ कोई ना कोई कुछ भगवान को अर्पण कर रहे हैं, हमें भी भगवान को सब कुछ अर्पण करना सीखना चाहिए। अगर वो कला हमने सीख ली तो फिर हमें कभी दुख नहीं होगा, क्योंकि संतुष्टि क्यों नहीं है, क्योंकि हम कुछ चाहते हैं, लेकिन हम कुछ चाहेंगे ही नहीं, हम सब कुछ भगवान को देना चाहेंगे तो स्वतः संतुष्ट हो जाएंगे, फिर उसमें असंतुष्टि कैसे। तो इसलिए ऐसी चीजें हमें करनी चाहिए, कृष्ण को प्रयास करना चाहिए कुछ देने के लिए। ये नहीं सोचना चाहिए कि मेरे पास तो कुछ है नहीं देने के लिए, मैं कैसे दूं, मैं क्या दूं। जैसे रामायण में हम लोग देखते हैं हनुमान जी के पास बहुत कुछ था करने के लिए, लेकिन गिलहरी के पास कुछ नहीं था, फिर भी उसने किया। तो ये नहीं सोचना, जो है हमारे पास उसको दे देना है। जैसे एक बार एक गरीब व्यक्ति एक साधु के पास गया और पूछा कि मैं गरीब क्यों हूं। तो उन्होंने कहा तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि तुम किसी को कुछ देते नहीं, दान नहीं देते। तो उसने कहा रे साधु महाराज मैं तो वैसे ही गरीब हूं, मैं क्या दान दूंगा, मैं आपसे पूछने आया कि मैं गरीब क्यों, और आप मुझे कह रहे तुम गरीब इसलिए हो क्योंकि दान नहीं देते। अरे पैसा होगा तो दान करूंगा ना। तो उन्होंने कहा जरूरी नहीं है कि पैसा होगा तो दान करेंगे, तुम्हें भगवान ने बहुत धन दिया है, तुम उसका उपयोग नहीं करते। तो गरीब ने कहा नहीं बिल्कुल धन नहीं है। बोले है तुम्हारे पास धन, बोले तुम्हारे पास जिह्वा है, अच्छे शब्द बोल सकते हो, तुम दूसरों को अच्छे शब्द नहीं बोलते तो तुम गरीब हो गए। तुम्हारे पास जो है उसको दो, भगवान ने तुम्हें धन दिया है, अच्छे शब्द बोलो, एक चेहरा दिया है, मुस्कुरा कर किसी का स्वागत करो, ये शरीर दिया है, दूसरे की किसी की सेवा करो, अगर इतना भी कर लोगे तो भी तुम सुखी हो जाओगे, लेकिन क्योंकि तुम नहीं करते हो इसलिए गरीब हो। तो गरीब व्यक्ति वो नहीं है जिसके पास धन नहीं है। गरीब व्यक्ति वो है जो जिन चीजों को भगवान ने दिया है उनका उपयोग नहीं करता। इसी तरह हमें जानना चाहिए कि ऐसा नहीं है कि भगवान की सेवा के लिए हमें बड़ा बड़ा उद्योग चाहिए। प्रभुपाद कहते हैं भगवद गीता में, भगवान ने कहा है पत्रम पुष्पम फलम तोयम, क्या तकलीफ है? क्या एक पत्ता नहीं तोड़ सकते हम पेड़ का? क्या एक फूल नहीं तोड़ सकते भगवान के लिए? वो सेवा है। मंदिर आते आते एक फूल तोड़कर भगवान को दे दिया, वो सेवा हो गई। तो कौन सा बहुत बड़ा? प्रभुपाद एक प्रवचन में बताते कि ये नहीं सोचना है कि अभी तो मैं बहुत पैसा कमाऊंगा, अभी ये करूंगा फिर भगवान की सेवा, नहीं, अभी तो जिस स्थिति में है उस स्थिति में हमें भगवान की सेवा करनी चाहिए। तो ऐसे सब लोगों ने भगवान को अर्पण किया, वामन देव को। और अब वामन देव ने सुना कि बलि महाराज यज्ञ कर रहे हैं भृगु कच्छ में। भृगु कच्छ ये नर्मदा नदी के तट पर है, तो वहां पर वो ये यज्ञ कर रहे हैं। तो तुरंत वो वहां के लिए चल दिए वामन देव। तो बहुत सुंदर एक उपदेश वो देते हैं हमें इसके द्वारा कि जीवन में समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। वामन देव अभी प्रकट हुए हैं, अभी अदिति के सामने प्रकट हुए, लेकिन जिस उद्देश्य के लिए आए थे उद्देश्य क्या था? बलि महाराज से सारा कुछ छीन लेना, मांग लेना। तुरंत चल दिए, रुके नहीं कि थोड़ा समय देखते हैं, अभी तो अभी तो आए हैं, अभी थोड़ा 6 महीना साल आराम करेंगे, थोड़े सेवाओं को लेंगे, नहीं, तुरंत चल दिए। उसी दिन चल दिए वहां पर बलि महाराज की तरफ। तो बहुत महत्वपूर्ण है, हमें समय बर्बाद नहीं करना चाहिए सुविधाओं में। जैसे उस दिन भी हम लोग 2 दिन पहले चर्चा कर रहे थे कि भक्ति की सुविधाओं में इतना नहीं बह जाना चाहिए कि हम भक्ति के उद्देश्य को भूल जाएं। तो वामन देव सिखलाते हैं कि जीवन में समय नहीं है, जिस कार्य के लिए हमें शरीर मिला है उसको पहले पूरा कीजिए, बाकी के सारे कार्य छोड़ दीजिए। नहीं तो बाकी के करते रहेंगे। जैसे मान लीजिए कि कोई व्यक्ति उसको शाम होने से पहले एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना है, अब वो चल दिया लेकिन रास्ते में उसको बहुत कुछ चीजें मिली, अच्छे पेड़ के फल, पेड़ में लगे हुए फल मिल गए और कुछ चीजें मिल गई, वो उनको इकट्ठा करता रहा कि रास्ते में खाने के काम आएगा, पहुंचने तक भूख लगेगी तो खाने के काम आएगा, लेकिन करते करते शाम हो गई, पहुंच ही नहीं पाया। तो फायदा क्या हुआ उन चीजों को इकट्ठा करने का? यही हमारा जीवन है, हमारी यात्रा भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक है और शाम होने वाली है, मृत्यु होने वाली है, शाम से पहले हमें वहां पहुंचना है। लेकिन हम किस चीज में फंसे रहते हैं? अन्य चीजों को इकट्ठा करने में, कि मुझे थोड़ा धन मिल जाए, कोई संपत्ति मिल जाए, थोड़ा आनंद मिल जाए, थोड़ा भोग मिल जाए, कोई पदवी मिल जाए, मैं चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर बन जाऊं, बस इसी में फंसे हुए हैं और फिर शाम हो जाएगी। तो आप वो अमरूद और सेब इकट्ठे करते रहे लेकिन उद्देश्य था कि आपको स्थान पर पहुंचना है, आप पहुंचे नहीं। इसी तरह जीवन में आप इन चीजों को, इन सुविधाओं को इकट्ठा करते रहे, इन चीजों में फंस गए, लेकिन जो उद्देश्य है मनुष्य जीवन का, भगवान की भक्ति, उसको प्राप्त नहीं कर पाए। शाम हो जाएगी, मर जाएंगे, समाप्त। तो इसीलिए समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। बहुत थोड़ा समय है हम सबके पास। कौन कह सकता है कि कुछ नहीं होगा मुझे अगले 10 साल में? कौन कह सकता है कि अगले 10 दिन में कुछ नहीं होगा? वैसे अगले 10 मिनट में भी कुछ नहीं होगा, ये कौन कह सकता है? तो इसलिए समय नहीं है। वामन देव दिखला रहे हैं समय बर्बाद मत करो। जिस उद्देश्य के लिए शरीर में आए हो, जिस उद्देश्य के लिए उन्होंने वामन रूप लिया, उसकी पूर्ति पहले की। इसीलिए जिस उद्देश्य के लिए हमें शरीर मिला है, मानव शरीर, उसकी पूर्ति पहले होनी चाहिए। और प्रभुपाद भागवत में लिखते हैं कई स्थानों पर, मनुष्य शरीर आत्म साक्षात्कार के लिए मिला है। हमें केवल आत्म साक्षात्कार, भगवत प्राप्ति, ये जीवन का उद्देश्य है। लेकिन इस उद्देश्य को प्राप्त करते हुए हम बाकी चीजों में अगर फंस गए तो फिर भगवान वही चीजें हमें दे देंगे। देखिए भगवान भी ऐसे ही है। अगर कोई फंस गया, जैसे वो नारद मुनि की कई बार हम लोग कथा सुन चुके हैं कि नारद मुनि ने भगवान से कहा कि आज आप ये सब लोगों को फ्री कर दीजिए वैकुंठ में एंट्री। भगवान ने कहा ठीक है, जो भी आएगा तुम्हारे साथ नारद, उसको फ्री ले आए, कोई पूछेंगे नहीं, कोई योग्यता नहीं, कोई भक्ति नहीं, कुछ नहीं, सीधे वैकुंठ में प्रवेश। नारद ने आकर पृथ्वी पर घोषणा कर दी, बहुत लंबी लाइन लग गई, सब पीछे चल रहे हैं और नारद बड़े कीर्तन करते हुए आनंद में चल रहे हैं। वैकुंठ में प्रवेश किया, उन्होंने कीर्तन करते हुए भगवान से कहा आपकी कृपा से आज बहुत आनंद है मुझे। क्या आनंद है? इतने सारे लोगों का उद्धार हो गया। कितने सारे लोगों का? नारद ने कहा इतने सारे लोगों का। भगवान ने कहा पीछे घूमकर देखो, और देखा तो एक भी नहीं, एक भी व्यक्ति नहीं। तो नारद ने, अरे क्या हो गया, झांक कर देखा कहां गए सब? तो आधे से ज्यादा तो स्वर्ग में लटक गए थे, क्योंकि चले थे भगवान के धाम जाने के लिए, लेकिन स्वर्ग दिखाई दिया बीच में। वो नंदन कानन वन अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, सुरापान कर सकते हैं, आधे से ज्यादा उधर ही लटक गए। जो थोड़े बहुत बचे वो बाकी के लोकों में तपस्या इत्यादि में फंस गए, कोई पहुंचा ही नहीं वैकुंठ। तो इसी तरह हम सब भी इस उद्देश्य को याद रखें कि हम किस कार्य के लिए आए हैं। हमें शरीर मिला है भगवत प्राप्ति के लिए, अगर उसको नहीं कर रहे हैं, श्रम एव ही केवलम, केवल समय की बर्बादी है। तो तुरंत वो चल दिए वहां से और पहुंचे बलि महाराज के यज्ञ में। अब बलि महाराज के यज्ञ में जब वो पहुंचे तो जितने भी वहां ऋषि मुनि थे, उन्होंने जस्ट देखा वामन देव को आते हुए, तो उनके प्रभाव से इतने आश्चर्यचकित हो गए, आपस में बात करने लगे, कौन है ये सूर्य देव तो नहीं आ रहे हैं? नहीं नहीं, स्वयं अग्निदेव हो या सनत कुमारों में से एक, कौन है ये इतने तेजवान? तो ऐसे जब वो बात कर रहे थे तो भगवान ने प्रवेश किया, और जैसे ही प्रवेश किया कि भगवान की कांति से बाकी सबकी कांति फीकी पड़ गई, और सब उठकर खड़े हो गए और सबने प्रणाम किया भगवान को, वामन देव को। बलि महाराज स्वयं गए आगे और बलि महाराज ने उनके चरणों को धोया और उस जल को ग्रहण किया। सुखदेव गोस्वामी कहते हैं कि ये जल जो शिवजी अपने मस्तक पर धारण करते हैं, गंगा को शिवजी मस्तक पर इसलिए धारण नहीं करते कि वो गंगा है, इसलिए धारण करते हैं क्योंकि वो भगवान के चरणों से निकला हुआ जल है। तो वैष्णव है, प्रभुपाद लिखते हैं तात्पर्य में कि जैसे शिवजी भगवान के चरणों से निकले हुए जल को अपने सर पर धारण करते हैं, हर एक भक्त को ये करना चाहिए। तो भगवान का जो चरणामृत या चरण से निकले जल है, उसको सर पे शिरसा धारयाम हम। ज्यादातर बाहर के जगत में जब कोई लोग चरणामृत पीते हैं तो उसको बोलते हैं वो लोग ऐसे कि ये चरणामृत पीते तो सर पर हम लोग धारण कर रहे हैं, शिरसा धारयाम हम, तो सर पर धारण करना चाहिए। तो इसी तरह बलि महाराज ने किया, और अब जब वो उनका सब स्वागत कर लिया तो बलि महाराज ने भगवान से पूछा कि भगवान को देखकर वो इतने प्रसन्न हो गए, वो कहते हैं कि आज आपके आने से मेरा सारा जीवन सफल हो गया, मेरे जितने पुरखे हैं वो संतुष्ट हो गए, मेरे परिवार के जन वो सारे प्रसन्न हो गए, ये पृथ्वी भाग्यवान हो गई आपके आने से, और मेरे जितने पाप हैं वो कट गए। तो देखिए भगवान के आने का प्रभाव क्या है, अगर हम भगवान को जीवन में लाते हैं तो जितने हमारे पाप हैं वो कट जाते हैं, संतुष्टि आती है, प्रसन्नता आती है। बलि महाराज इसको कह रहे हैं, तो बलि महाराज ने कहा आज मैं पूर्ण संतुष्ट हो गया, और मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप कुछ मांगने आए हैं। भगवान तो आए मांगने थे, तो उन्होंने हृदय से प्रेरणा दे दी बलि महाराज को, बोलो बोलो। तो बलि महाराज बोल रहे कि मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा है कि आप कुछ मांगने आए हैं, आपकी जो इच्छा हो मुझसे मांग लीजिए, मैं आपको वचन देता हूं कि मैं दे दूंगा। तो क्या चाहिए आपको मांग लीजिए, आपको धन चाहिए, सोना चाहिए, आपको सुंदर कन्या चाहिए विवाह करने के लिए, आपको गांव चाहिए, भूमि चाहिए, क्या चाहिए आप बोलिए, मैं आपको देने के लिए तैयार हूं। तो ऐसे वचन बलि महाराज ने जब दे दिए, कह दिया कि हाँ मैं तैयार हूं, अब अगले अध्याय में भगवान धोखा देने वाले हैं। तब अगले अध्याय में भगवान मांगेंगे उनसे कि ठीक है बहुत देना चाहते हो, तो क्या दान मांगा भगवान ने, ये अगले अध्याय में हम लोग कल सुनेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कोई प्रश्न किसी का? यस yes.